और उसके बाद फिर आखिरी रुकू है। नबी सल्लम फजर से पहले जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो इस रुकू की तिलावत करते थे। आयत 190 से लेके सूरत के आखिर तक पूरे रुकू में मैसेज कायनात की तख्लीक पे गौर है। पता क्या चला, जितना कायनात पे गौर व फिक्र करोगे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। इन नफी खल के समावाती वल अर्दि वख्तिलाफिल्लैली वन्नहारि लआयातिल्लि उलिल अल्बाब। अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों ने गौर व फिक्र छोड़ दिया, रिसर्च वर्क छोड़ दिया, सितारों पे कमंदे डालना छोड़ दिया। इसीलिए जिन लोगों ने ये काम किया वो दुनिया के इमाम बन गए। आयत 191 से 192 में कुरान का सफ़र फिक्र और जिक्र, यानी इन दो रस्तों से तुम पहुंचोगे अल्लाह ताला तक। और क्या पता चला कि अल्लाह ताला हकीम और दाना है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। और कायनात की हर चीज़ अल्लाह की वाज़ेह निशानी है। गौर व फिक्र कीजिए। और फिर इसमें बहुत प्यारी दुआएं हैं, अगर आप देखें ना आयत 193 से 194 में तकमीले ईमान और ईमान अफरोज दुआएं हैं। रब्बना इन्नना समीना मुनादिया युनादी लिल ईमान अनामिनु बि रब्बिकुम फामन्ना। आप इन दुआ पे आमीन के। और आप सोचिए कि जब नबी सल्लम फजर से भी पहले दुआएं पढ़ते होंगे तो क्या खूबसूरत वो वक्त होता होगा कि रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़ना माल अबरार रब्बना व आतिना मा वातना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा यौमल क़ियामत इन्नका ला तुख़्लिफुल मीआद। तो आज से आप भी अमल शुरू कीजिए, देख के पढ़ लीजिए। ये आखिरी रुकू कोई भी बुक है या कहीं भी लिखा हुआ है तो उधर से देख कर आप पढ़िए। इसमें एक लफ्ज़ आया अबरार। अबरार कौन होते हैं? बिर से नेकियाँ करने वाले, कामयाब, जो अल्लाह से खौफ करते हैं और उसकी नाफरमानी से बचते हैं और नेक अमाल के ज़रिए उसकी कुर्बत हासिल करते हैं और अपने राज और एलानिया में खौफे खुदा दिल में रखते हैं, यानी ढके छुपे हर वक्त अल्लाह से डरते हैं। लोगों में होते हैं फिर भी डरते हैं, और लोगों से अलावा तन्हाई में होते हैं तो डरते हैं। और एक और बात इससे नोट कीजिए, अल ईमान बैनल खौफ व रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज़ है। मोमिन को अपने गुनाहों का डर भी होता है, हाय अल्लाह ने मुझे पकड़ लेना है, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी होती है। फिर आयत 195 का टॉपिक लिखिए, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। जो दरवाज़ा नॉक करता है एक दिन दरवाज़ा खुलवा ही लेता है। मन जद्दा वजद, अरबी का एक मुहावरा है, जो कोशिश करेगा वो पाएगा, यानी फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, बस उनके रब ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। और अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। और क्या पता चला कि फितरी खसूसियात में मुख्तलिफ होने के बावजूद औरत और मर्द के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, कमाल हासिल करने में, जन्नत हासिल करने में, नेकियां पाने में। आज अल्लाह ने ज़रूरतन कुछ चीज़ें कम रखी, अगले पारे में इस पे थोड़ी बात होगी इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ समझिए कि औरत और मर्द दोनों सेम दर्जे की जन्नत में जा सकते हैं अपने अमाल के ज़रिए। फिर एक और चीज़ पता चली कि तबई तकाज़ों में इख्तलाफ हुस्ने तख्लीक की अलामत है। अल्लाह ने कई रंगों के फूल बनाए, कई तरह के परिंदे बनाए, ब्यूटी है कायनात में। आपको कोई बहुत बहादुर दिखता है, कोई ज़रा कम दिखता है, कोई खूबसूरत है, कोई कम है, तो इस्लाम औरत और मर्द की बहस नहीं छेड़ता, बल्कि इस्लाम तो हकूक ए निस्वां का सबसे बड़ा लम्बरदार है। इस्लाम ने औरत को बहुत सारे हकूक दिए। फिर आयत 196 98 का टॉपिक क्या है, कुफार की सरगर्मियों का असर ना लो, यानी अगर ये कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, डोंट वरी ला यगुर्रन्ना का तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद। कभी कभी हौसला टूटता है ना, पता नहीं क्या होगा, हाय मुसलमान सारे खत्म ना हो जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं ना ना मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम वबी सलमिहात। ये तो बहुत थोड़ा सा फ़ायदा है दुनिया का, इसके बाद तो जहन्नुम है और वो बुरी जगह है। और साथ ही फिर जो इनकी कामयाबी है, तरक्की है, उसको क्या कहा कि कुफार का चलना फिरना, इनकी मूवमेंट तुम्हें धोखे में ना डाले। यानी अमूमन देखा गया कि दुनिया में गैर मोमिनों के पास दुनिया की दौलत माल ज़्यादा होता है, तो अल्लाह कहते हैं फिक्र नहीं करो, इससे ये ना सोचो कि अल्लाह इनसे राज़ी है, हकीकी ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी है और वहाँ की कामयाबी ही असल में पूरी कामयाबी है। और उसके बाद फिर आयत 199 जो सेकंड लास्ट आयत है सूरत की, इससे क्या पता चलता है कि अहले किताब में भी सालेहीन है, जो कि मज़मून पीछे गुजर चुका। और उसके बाद फिर आयत 200 जो बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी सूरत आले इमरान को एक असूल में डालती है, और वो क्या है, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। 4 पॉइंट्स हैं, यानी 4 नुकाती एजेंडा कामयाबी का। आखरत में कामयाबी चाहते हो, इवन दुनिया में चाहते हो, तो 4 काम कर लो। नंबर 1, अल्लाह की राह में इस्तकामत से डटे रहो। फिर सब्र और इस्तकामत में कुफार से बाजी ले जाओ, आपस में जुड़े रहो, और डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते रहो, और इस्लामी माशरे के अफराद दुश्मन के मुकाबले में सीसा मिलाई दीवार की तरह आपस में ऐसे जुड़े हुए हों जैसे एक दीवार होती है, मरबूत हों, साबित कदम हों, साबिर हों और मुतहम्मिल हों। और अल्लाह ताला आज उम्मत मुस्लिमा को इन सारी खूबियों से मुत्तसिफ़ कर दे। तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सूरत पूरी हुई। इसके बाद कुछ हिस्सा सिर्फ यू आयात हैं इस पारे के एंड पे सूरत निसा से मुतल्लिक, 1 से 23 तक आयते हैं। सूरत निसा क्या है, तरतीब में देखिए तो नंबर 4 सूरा, 176 आयात हैं। कुरान पाक को जीनत देने वाली सूरत मुबारक है। आप कह सकते हैं कि सूरत में फैमिली सेटअप, ख़ानदानी निज़ाम, इसके अंदर कामयाब घराने क्या होते हैं, ख़ानदान क्या होता है, बड़ी खूबसूरत कॉम्प्रिहेंसिव सी जामे सूरत है। और अल्लाह के नबी की एक रिवायत जो दारमी में है कि सूरत निसा क्या है, वन निसाओ मुहब्बिरतुन, सजावट, हिब्र कहते हैं सजावट को, स्याही को भी कहते हैं, मतलब ये कि ये कुरान पाक को सजाने वाली एक सूरत है। आइए ज़रा पूरी सूरत के जो आयते हैं उसका ब्रेक डाउन देख लेते हैं ताकि आपका जहन नेविगेट करे इन चीज़ों को। तो 1 से 43 यानी शुरू की 43 आयात जो हैं ये इस्लाम की माशरती हिदायत, जिनका हदफ क्या है, माशरे के हर फर्द का माल जान और आबरू का तहफ्फुज़ और एहतराम। यानी आप कह सकते हैं कि पहली 43 आयात किसी भी माशरे के लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत से मुतल्लिक है। फिर आयत 44 से 57 तक में यहूद के जरायम का बयान है। हर जगह ये साथ साथ क्यों चल रहा है, ताकि तुम वो काम ना करना जो पिछली कौमों ने किए थे। फिर आयत नंबर 48 से 149 जो एक तवील हिस्सा है, इसमें अहले ईमान से खिताब है। क्या पता चला कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है, उसको अपने अमल के लिए रखो। और फिर इसमें आप देखेंगे कि मुनाफिकीन की 3 कमज़ोरियों की मजम्मत है। नंबर 1, अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करते थे, हिजरत से पहलू तही थी, और अल्लाह की राह में जंग से फरार है। यानी आप और मैं अपने लिए इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करती, हिजरत मुझे बुरी लगती है, और अल्लाह की राह में अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई हालात बन जाए, तो उससे मैं भागती हूँ, तो ये निफाक की अलामत है। फिर इसके बाद आयत 150 से लेके 176 में अहले किताब के जरायम और अहले ईमान के लिए कुछ हिदायत हैं। तो क्या पता चला कि बहुत ही सोशल सूरत है जो आपको किसी भी माशरे में जीने मरने के तरीके सिखाती है। आइए देखते हैं कैसे। आयत नंबर 1, टॉपिक लिखिए मसावात इंसानी की असासात, यानी वो बुनियादें, वो फाउंडेशन जिस पे किसी भी सोसाइटी में इंसानों में मसावात होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आयत नबी सल्लम खुतबा निकाह में पढ़ते थे। या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। अब देखिए लफ्ज इत्तकू आया, और दोबारा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम है, 2 दफ़ा तकवे का लफ्ज़ है इसमें। क्या, एक तकवा अल्लाह से मामलात में और एक तकवा बंदों से मामलात में। कोई घर नहीं बच सकता, कोई मुआशरा नहीं बच सकता जहाँ अल्लाह का खौफ ना हो। तो क्या पता चला, कदीम जाहिलियत ने औरत से उसकी इंसानियत, जबकि जदीद जाहिलियत ने औरत से उसकी निस्वानियत सलब कर दी। आज इक्वलिटी और आज़ादी के नाम पे औरत को औरत नहीं रखा, बल्कि वो बेचारी एक मर्द बन गई। दूर से बहुत चमकता है, लेकिन वेस्ट की औरत बड़ी मजलूम है। बेचारी बाहर की भी जिम्मेदारियां अदा करती है और घर की भी अदा करती है। फिर आयत नंबर 2 का टॉपिक है, यतीम के माल की हिफाजत करो। गज़वे उहद में बहुत सारे सहाबा जो शहीद हुए, तो उनके बच्चे जो यतीम हुए, उनके हकूक की यहाँ बात है कि उनको माल भी दो और पाक चीज़ दो और उनकी चीज़ों को मिसयूज़ ना करो। और यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो इनका माल इनके सपुर्द कर दो। और खबीस से यहाँ घटिया चीज़ें और तैयब से उम्दा चीज़ें मुराद है, यानी ऐसा ना हो कि उनके माल की अच्छी अच्छी चीज़ें तुम ले लो और गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीज़ें इनको दे दो। और इसके बाद फिर आयत 3 से 4 में बीवियों के हकूक है, जिसमें आम हालात में तो एक ही बीवी, लेकिन वो कौन सी, फनकेहू मा ताब लकुम मिनन निसा, यानी जिस औरत से शादी की जा रही है उसके लिए दिल में अच्छे जज्बात होने, ये कामयाब शादी की अलामत है। इस पे इंशाल्लाह अगले पारे में मज़ीद थोड़ी सी बात होगी। और यहाँ फिर तादुद अजवाज, एक से जायद शादियाँ करने की जो बात है वो कुरान की शिकायत पे है। अल्लाह ने आयली मसाइल का बेहतरीन हल पेश किया कि किसी सोसाइटी में अमूमन औरतें मर्दों से ज़्यादा होती हैं, तो अगर एक मर्द अदल और इंसाफ करते हुए एक से ज़्यादा शादियां करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे कल्चर में तो इस मौजू को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो बेहतर है कि आप इसकी डिटेल तफसीर सुने ताकि आपको ये पता चले कि हर चीज़ को पेश करते वक्त उसके हालात और वाकयात को नज़र में रखा जाएगा। फिर इसी तरह 3 to 4 में बीवियों के हकूक है, जिसमें हक महर है। इस दवाजी ज़िंदगी में महर, हक महर के महर, मोहब्बत, मेहरबानी मर्द की तरफ से एक टोकन ऑफ लव है, ये औरत की कीमत नहीं है, औरत की शख्सियत और वक़ार और उसको इज़्ज़त देने की एक चीज़ है। इस्लाम ना तो मर्द को जुल्म का हक देता है और ना औरत को, बल्कि दोनों को एक दूसरे के हक अदा करने की दावत दी जाती है। फिर आयत 5 to 6 में दोबारा यतीमों को उनके माल लौटाने के बारे में कुछ हिदायात मिल रही हैं, यानी कि ये ना करो कि उनके माल को तुम जल्दी से उनको दे दो और वो ज़ाया कर दें। वला तू तो सुफहा में पता क्या चला कि माल अल्लाह की एक नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मलकियत के बारे में इस्लामी तसव्वुर भी दे दिया गया आयत 5 to 6 में कि हकीकी मालिक माल का अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से माल माशरे के सपुर्द होता है और माशरा अहलियत की बुनियाद पर ये माल अफराद के हवाले करता है। और अल्लाह के नबी की इसमें एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो आपने अबू ज़र को नसीहत की थी कि अबू ज़र मैं तुम्हें कमज़ोर समझता हूँ, मैं जो अपने लिए पसंद करता हूँ वही तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ, तुम कभी दो लोगों पर अमीर ना बनना और ना किसी यतीम के माल की सरपरस्ती कबूल करना। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। क्या पता चला कि जिसको ज़रा सा भी डर होता है ना कि मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगा, तो उसको मनी मैटर्स में नहीं आना चाहिए। फिर आयत 7 to 8 विरासत की तकसीम के हवाले से हिदायत, कुरान कितना खूबसूरत हल देता है। आप देखेंगे कि लिर रिजाली नसीबुन से बात शुरू करके सिर्फ 2-3 आयात में सब के हक दे दिए। इसको इल्मुल फ़राइज़ कहते हैं, ज़रूर इसको सीखिए, क्योंकि मेरा सिर्फ मर्दों का हक नहीं बल्कि औरतों का भी है। दौरे जाहिलियत में औरतों को हकूक नहीं मिलते थे, मिरास कम हो या ज़्यादा तकसीम होगी, माले मतरू का थोड़ा होने की वजह से ये कोई जवाज़ नहीं कि इसे तकसीम नहीं करना, अच्छा सारा एक ही बेटे को दे दो, बहनों को दे दो। तो इसको भी सुनिए, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि हम सब ने मरना है। कभी कभी गलत वसीयत की वजह से इंसान अपने माल को ज़ाया करता है। तो आयत 9 से 10 से क्या पता चला कि यतीम का माल नाहक खाने वाले अपने पेट में आग भर रहे हैं। वल यख्शल्लसी न लऊ तरकु मिन खल्फिहिम ज़ुर्रिया, इससे पता चलता है कि किसी के बच्चों का हक खाते हुए सोच लो कि अगर उसकी जगह तुम मर जाते और तुम्हारे बच्चों का कोई माल खाता तो तुम्हें कैसा लगता। फिर इसके बाद आयत नंबर 11 में औलाद और वालदैन का मीरास में क्या हिस्सा है वो बताया गया, यानी अगर मैयत की औलाद में लड़के और लड़कियां दोनों हों, जो कि एक अमूमी सूरत में होता है, तो लड़कों को 2 हिस्से और लड़कियों को 1 हिस्सा मिलेगा। औलाद होने की सूरत में माँ बाप में से हर एक को कुल तरके का 1/6 हिस्सा मिलेगा, और मरने वाले की औलाद में अगर 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो इनको कुल तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। यानी आप देखिए, सिर्फ इस एक आयत में बच्चों के भी हिस्से मिल गए और माँ बाप के, और आयत नंबर 12 में शौहर की वफ़ात की सूरत में बीवी को, और बीवी की वफ़ात की सूरत में शोहर को, और इसी तरह कलाला सूरत में यानी जबकि औलाद में बेटे या माँ बाप भी ना हो, तो फिर भाई बहनों का हिस्सा सिर्फ एक आयत में है, वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम। बस मैं ये कहना चाहूँगी इस पे कि इस्लाम से ज़्यादा मैथमेटिकल रिलीजन कोई नहीं होगा। बिल्कुल गिन गिन के हर हक वाले को हक दिया, और इस मौजू के एंड पे आए 13-14 में क्या कहा कि अल्लाह की हदों की अहमियत यानी हदूदुल्लाह की अहमियत पहचानो, इसलिए कि तिलका हुदूदुल्लाह या अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें यानी विरासत के माल की बांट में कमी बेशी ना करो, इसमें दखल अंदाजी ना करो। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमने नहीं लेना, हम तो भाइयों को दे रहे हैं। आप ले लीजिए, उसके बाद जिसको मर्जी दीजिए, क्योंकि जो अल्लाह ने हक दिया आप उससे पीछे नहीं होते। इसके बाद मौजू बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल सूरत के एंड पे, बल्कि यही टॉपिक फिर अगले पारे में भी चलेगा। आयत 15-16 का टॉपिक है बदकारी की सज़ा। इसमें जिना भी है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, इसमें लेस्बियनिज्म और गेइज्म सब कुछ आता है, और ये इब्तदाई दौर की सज़ा थी। अल्लाह ताला ने इसमें फिर तौबा की दावत दी कि फ़ैन ताबा व असलहा, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और अपनी इसलाह कर लें तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। बदकारी की सज़ा में चार गवाहों की शर्त रखी गई है, यानी कोड़े हैं अगर इसमें तो इसमें चार गवाह भी हैं, और चार गवाह कब होंगे, जब ये काम खुल्लम खुल्ला महफिलों में क्लबों में होगा, ओपन एयर होगा, ताकि लोगों की इज्जत से कोई ना खेले। और आयत 17-18 में तौबा का बड़ा खूबसूरत नुक्ता नज़र है कि तौबा किसकी कबूल होती है और किसकी नहीं होती। इन्नम तौबतुल्लाह ही कहकर अल्लाह ने बता दिया कि तौबा उनकी कबूल होती है जिनसे गलती से गुनाह हो जाता है लेकिन फौरन तौबा कर लेते हैं, डिली डैली नहीं करते, लेकिन जो मौत नज़र आने तक गुनाह में मगन रहें उनकी तौबा कबूल नहीं होती। और आयत 19-21 ख़वातीन के साथ जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें थीं, मसलन अगर कोई शख्स फौत हो जाता तो उसकी बीवी को अगले निकाह से भी रोक लेते, बल्कि उसको माले विरसा समझ लेते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आगे तक अल्लाह ने मुखातिब करके क्या बताया कि ख़वातीन के साथ जुल्म ना करो। अगर तलाक दी है तो उसको हक मेहर वापस करो, अगर खुद औरत तलाक लेती है खुला की सूरत में तो और बात है, और अगर किसी को बहुत दे चुके हो एज अ वाइफ लेकिन तलाक की सूरत में उससे वापस नहीं लोगे, किंतार का लफ्ज़ आया यानी खजाना हीप्स ऑफ मनी भी दिए हैं तो उससे वापस ना लो, हक मेहर भी वापस नहीं लिया जाएगा। और आयत 22 में सौतेली माँ से निकाह की ममानियत है, वला तन के हुमा नकह आबाओ को। आप देखिए जब इंसान अखलाक से गिरता है तो इस तरह के काम होते हैं। अरब माशरे में लोग अपनी ही सौतेली माँ से निकाह कर लेते थे, जो इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद फिर आखिरी आयत 23 में मुहर्रिमात की बात है, हुर्रिमत से लेके रहीम तक अल्लाह ने एक लंबी लिस्ट दे दी, माँ बहन बेटी फूफी खाला भांजियाँ भतीजियाँ सौतेली बेटियाँ सौतेली बहनें रज़ात से रज़ाई बहनें रज़ाई माएँ और अपनी ही बेटियाँ सौतेली यानी बीवी की पहली जो औलाद है, इन सब से किसी मर्द का निकाह नहीं हो सकता। और फिर एक मर्द के निकाह में दो बहनों का रहना इधर से पता चलता है, और हदीस से पता चलता है कि फूफी भतीजी और खाला भांजी भी एक मर्द के निकाह में नहीं रहती। ये क्यों किया? इसलिए किया कि घर के अंदर का माहौल अच्छा रहे। आप सोचिए कि अगर भाई बहन का भी निकाह हो सकता है तो घरों में क्या हालात होते। तो अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।